मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 19 जुलाई 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विकास चंदा जयपुर से, सर्वेश कुमार सिंह गोंडा उत्तर प्रदेश से, जानुकांत रे पटना से और अर्पित कौशिक लखनऊ से। तो विकास, सर्वेश, जानु और अर्पित, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसके बाद मैं धन्यवाद देता हूं अपने उन सभी साथियों को, उन सभी अपने मित्रों को, अगर विशेष शब्द कहना चाहूं तो स्पेशली उन अपने शिष्यों को जिन्होंने गुरु पर्व पूर्णिमा के आज के अवसर पर मेरे प्रति अपना प्रणाम निवेदन किया है, वंदन भेजा है, आभार व्यक्त किया है और बधाइयां भी दी हैं। मित्रों, ये बधाइयां मुझे व्हाट्सएप पर मिली हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन भी स्टूडेंट्स ने ईमेल के जरिए मुझे ये सब चीजें भेजी होंगी, ईमेल अभी मेरे पास नहीं आए हैं, इसलिए मैं आज के अपने इस डेली ऑडियो गाइडेंस में ईमेल भी शामिल नहीं कर पा रहा हूं। कल के डेली ऑडियो में आज के भी ईमेल शामिल किए जाएंगे, आपका लिखना बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन ये बात मैं इस विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईमेल वाला हिस्सा आज नहीं होगा। तो आप सबको बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और इनफैक्ट सच पूछे तो ईश्वर से प्रार्थना, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड ब्लेस यू, भगवान आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, अपनी शक्ति और क्षमताओं का एक तरीके से आप तक संचारण करे और आप सबको इस योग्य बनाए कि आप सब अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। मित्रों, ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, मैं चाहता हूं कि आज इसी पर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूं, क्योंकि यह एक अवसर ऐसा है। मित्रों, दो चीजें होती हैं, एक है हमारे जीवन की औपचारिकताएं। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को प्रणाम करना, याद करना, वंदन करना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना एक औपचारिकता भी हो सकती है, लेकिन दूसरा है उन भावनाओं को जीना, यानी कि जिन भावनाओं को आप व्यक्त कर रहे हैं वास्तव में वे भावनाएं वे हैं जिन्हें आप जी भी रहे हैं। वो औपचारिकताओं से हटकर ऊपर उठकर या गहराई में जाकर उनसे कई गुना ज्यादा हैं। बल्कि सच पूछिए तो औपचारिकता जहां शब्दों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति है, वहीं उन भावों को जीना जीवन के माध्यम से उनका आत्मसातीकरण है। मित्रों, ये सच पूछिए तो एक भाव ही है, गुरु बेसिकली भाव ही है। आप देखिए कि बहुत से ऐसी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, यहां तक कि यथार्थ जीवन में भी आपको इस तरह की चीजें पढ़ने सुनने को मिल जाएंगी, जबकि गुरु नहीं है, शरीर के रूप में उसका अंत हो चुका है, लेकिन जो शिष्य हैं वे कभी भी अपने गुरु की कमी का एहसास नहीं करते। उन्हें लगता है जैसे कि गुरु हमेशा मेरे साथ है। ठीक वैसे मित्रों, जैसे कि बहुत से लोगों को यह लगता है कि मेरे पिता हमेशा मेरे साथ हैं, उनके अंदर इस तरह का ही भाव रहा होगा कि मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। क्योंकि यहां एक बात समझने की और भी है दोस्तों, वह यह कि जो गुरु है वो कोई पद नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर पोस्टेड है और आपको बैठा कर शिक्षा दे रहा है, पढ़ा रहा है, वही गुरु है। सच पूछे तो गुरु जैसा कुछ है ही नहीं। अब आप थोड़े से चौंकेंगे कि आप ये ऐसा कैसे कह रहे हैं कि गुरु जैसा कुछ है ही नहीं। जी हां, जैसे माता पिता तो हैं, क्योंकि वो हमारे जैविक कारण हैं, माता पिता तो वो हमारे हैं, हमारे भाई बहन भी हैं, उनके साथ रक्त का संबंध है, लेकिन गुरु, गुरु जैसा कुछ होता ही नहीं है। सच पूछे तो ये तो आप हैं जो किसी को गुरु मान रहे हैं, यानी कि ये आपका अपना ही भाव है। गुरु का अपना कुछ नहीं है कि उसके पास ज्ञान है तो वो आपको दे रहा है, वो चूंकि उसे ये अवसर मिला है इसलिए वह आपको दे रहा है, या चूंकि उम्र में बड़ा है उसके पास अनुभव ज्यादा है इसलिए वह आपको दे रहा है और आपको उसकी बात माननी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो कम से कम ऐसा ही मित्रों मानता हूं। सच पूछिए तो ये तो आप हैं जो गुरु मान रहे हैं, और किसी को भी गुरु मान रहे हैं, ये नहीं कि जिसने आपको पढ़ाया है, जो पढ़ा रहा है वही गुरु है, आपके माता पिता भी उतने ही गुरु हैं, शायद प्रथम गुरु तो वही होते हैं। जहां से भी जो कुछ भी आपने सीखा वह आपका गुरु है, उस सेंस में कि वह सिखा रहा है, सिखाने के साथ साथ वह आपके जीवन को दिशा भी दे रहा है। देखिए सिखाना एक अलग चीज है, कलाएं सिखाई जा सकती हैं, आप उसका उपयोग न भी करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में अभी भी कलाओं की कुछ ऐसी विधाएं हैं जहां गुरु शिष्य परंपरा बहुत जबरदस्त रूप में काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में तो लगभग लगभग वो खत्म होती जा रही, हम लोगों के समय तक ये परंपरा थी और आज भी मेरी आत्मा में मेरे गुरु बसे हुए हैं जिन्हें मैंने सुबह सुबह नमन किया है, लेकिन ये परंपरा धीरे 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 अब घटती जा रही है। उसके बहुत ही सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मूलतः मित्रों जो एक गुरु है वो मूलतः सच पूछिए तो आचरण से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं भाव है, आचरण से ही जुड़ा हुआ है। जैसे आप संगीत में देखिए, घराना चलता है, नृत्य में देखिए कि वहां गुरु शिष्य की कितनी जबरदस्त परंपरा आज भी मौजूद है। ये ललित कलाएं हैं, चित्रकला में भी काफी कुछ सीमा तक है, क्योंकि ये कलाएं ऐसी हैं जिनको बैठकर सिखाया जाता है, मतलब एक गुरु यहां कोच की तरह काम करता है और वो जो बता रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर सकें, या आपकी अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ाने का एक मैकेनिज्म कि आपकी जो ग्रहणशीलता है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो सके, विस्तृत हो सके, गहरी हो सके, ताकि वो जो बता रहा है वह आपके अंदर बिल्कुल समा जाए, वह आपके आचरण में आ जाए। तो जो आपका ये भाव है, जो गुरु किसी को गुरु मानने का भाव है, याद रखिए ये आपका अपना भाव है, और ये जितना गहरा होगा, जितना शुद्ध होगा, जितना भावनात्मक होगा, मान करके चलिए कि आपकी जो रिसेप्टिविटी होगी, जो ग्रहण करने की ताकत होगी वो उतनी ज्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों जो कला और जो ज्ञान का क्षेत्र है, देखिए आजकल मतलब पैसे की बात तो हर जगह आ चुकी है, और पैसे की बात देखिए पहले जमानों में भी थी, जब गुरु हुआ करते थे तो वो राज्य द्वारा पोषित होते थे, मतलब उनका सारा खर्च राज्य उठाता था, तो कहीं ना कहीं उनकी सारी व्यवस्थाएं की ही जाती थी, क्योंकि जीवन यापन के लिए तो जरूरी है ना, गुरु है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जैविक गतिविधियों से, जैविक नियमों से ऊपर उठ गया है और वो केवल हवा पी करके और हवा खा करके जीवित रह जाएगा। गुरुओं के बकायदे परिवार रहे हैं, हमारी गुरु माताएं रही हैं, ऋषियों की पत्नियां रही हैं, सब कुछ था, लेकिन राज्य उनका उनकी सारी जिम्मेदारी लेता था, तो वो उस समय विद्यार्थियों से कुछ नहीं लेते थे। आज ये चीज थोड़ी सी उलट गई है, राज्य भी ले रहा है, निजी क्षेत्र भी आ गए हैं, कुछ निजी तौर पर भी कर रहे हैं, तो वहां जो शिष्य है उसके मन में कहीं ना कहीं स्वाभाविक तौर पर, मैं स्वाभाविक तौर पर ही कह रहा हूं, मतलब उसकी भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, एक ऐसा भाव आ गया है कि भाई मैंने तो पैसा दिया है और बदले में मुझे चीज चाहिए, और वो चीज क्या है, ज्ञान। और अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ज्ञान चीज नहीं होती, सबसे मुश्किल काम यह है इस फील्ड का, ज्ञान चीज नहीं है, चीज को आप थैले में डाल करके अपने घर ले जा सकते हैं, ज्ञान को किस थैले में डालकर ले जाएंगे, ये तो मुसीबत है ना। और ज्ञान का जो थैला है वो आपके भाव जगत में है, आपके मस्तिष्क में है, आपकी आत्मा में है, आपके चरित्र में है, और वो थैला दिखाई नहीं देता कि आप उसका मुंह फैलाएं और कोई गुरु सामने डाल दे। तो जो ये क्षेत्र है ज्ञान का, ये पूरी तरह से रिसेप्टिविटी का ही तो क्षेत्र है, और रिसेप्टिविटी आपकी कैसे विस्तृत हो, व्यापक हो, गहरी हो, ज्यादा स्थायी रह सके, वह इस बात पर निर्भर करती है कि गुरु के साथ आपने किस तरह का रिश्ता कायम कर रखा है। अगर उसके प्रति विश्वास का रिश्ता है, श्रद्धा का रिश्ता है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो जाकर के वो भक्ति तक के रिश्ते में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो सब विश्वास के लेयर्स हैं, है ना। विश्वास बहुत ही ऊपरी लेयर है, श्रद्धा उसके थोड़े से बीच की लेयर है, और भक्ति बिल्कुल अंतिम लेयर है, बहुत ही गहराई वाली सतह है, एकदम तल है समझिए वो। तो जितना ज्यादा आप जिस गहराई तक पहुंच सकेंगे, स्वाभाविक रूप से आपकी रिसेप्टिविटी उतनी ज्यादा हो सकेगी और आप उतना ज्यादा ही ले सकेंगे। इसीलिए मित्रों, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है, और मैं अपने सभी सुनने वाले प्रिय श्रोताओं से ये बात कहना भी चाहूंगा कि याद रखिए कि इम्पोर्टेंट गुरु नहीं है। मैं जो डेली ऑडियो गाइडेंस में बोल रहा हूं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट आप हैं, जिसे मैं बीच बीच में अक्सर दोहरा दिया करता हूं ताकि आप अपने महत्व को समझ सकें, इम्पोर्टेंस को समझ सकें। क्योंकि जब तक आप अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे, आप इसके इम्पोर्टेंस को भी नहीं समझ सकेंगे। मैं इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं हूं। वो भ्रम तो सच पूछिए, आप जैसे शिष्य, आप जैसे प्रिय श्रोता, आप जैसे आभारी, और सच पूछिए तो जो बहुत ही कृतज्ञ श्रोता हैं, व्यक्ति हैं, वो भ्रम तो अपने ईमेल के जरिए, मुलाकात के जरिए, फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए मेरे मन में पैदा करते हैं। मुझे कोई भ्रम नहीं है। हाँ, मुझे ये विश्वास जरूर है कि जो कुछ भी हैं वे आप हैं, आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इसको समझिए। इसीलिए मुझे सच पूछे तो कभी कभी लगता है, और आज मैं अपने मन की बात सच में आप लोगों से कहना भी चाहूंगा कि जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, ठीक उसी तरह से एक दिन शिष्य पूर्णिमा का भी क्यों नहीं रखा गया। शिष्य पूर्णिमा का भी कोई विधान होना चाहिए था, क्योंकि शिष्य की इंपॉर्टेंस कम नहीं है। जब रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद मिले तो लिपट कर रोने लगे, क्योंकि मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम कहां थे। गुरु को भी शिष्यों की प्रतीक्षा होती है, क्योंकि शिष्य ही तो फिर गुरु को जीवित रखता है, उसकी उस परंपरा को आगे बढ़ाकर। तो जितना इंपॉर्टेंस शिष्य के लिए गुरु का है, याद रखिए, किसी भी मायने में गुरु के लिए भी शिष्य की महत्ता उससे कम नहीं होती है। तो सच में दोस्तों, मुझे उस दिन बेहद खुशी होगी जिस दिन कोई क्रांतिकारी व्यक्तित्व इसकी भी शुरुआत करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारे शिष्य थोड़ा सा हिचक रहे हैं, जो अच्छे शिष्य हैं। आज भी मेरे बहुत से ऐसे शिष्य हैं, क्योंकि दोस्तों, ये मैं बड़ा खुशकिस्मती रहा हूं, समझ लीजिए कि जब मैं 20 साल और कुछ महीने का रहा हूंगा, मैंने एमए ही किया था और मैं कॉलेज में पढ़ाने लगा था। मतलब ये मान करके चलिए कि मैं एमए फाइनल में जब पढ़ रहा था, तो कुछ स्टूडेंट एमए प्रीवियस में भी पढ़ रहे थे, और एमए फाइनल के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद में उसी कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो जो एमए प्रीवियस में पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो एमए फाइनल में आ गए थे, और पता लगा कि मैं उन्हें ही पढ़ा रहा था। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि शुरू में ही मुझे एमए की कुछ क्लासेस दे दी गई थी। तो मैं आज मान करके चल, कितने सालों से इस मतलब गुरुत्व वाली चीज को भी लेकर के चल रहा हूं, और शिष्यत्व वाली तो जिंदगी भर चलती ही रहेगी, वो तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। शायद 5-6 साल की उम्र से ही शुरू हो चुकी है, जब मैंने अपने पिता को सही मायने में अपने पहले गुरु के रूप में स्वीकार किया था, और आज भी उनके द्वारा बताई गई जो केवल 2-3 बातें हैं, वही मेरे पूरे के पूरे जीवन का निर्देशन कर रही हैं। तो मित्रों, शायद मुझे लगता है कि शिष्य दिवस के लिए इसलिए कोई आगे नहीं आता है, कहेंगे कि देखो ये अपने को बड़ा समझ रहा है, ये तो आत्म प्रकाशन की बात हो गई, ये तो अहम की बात हो गई, शायद इसीलिए इस क्षेत्र में संकोच चल रहा है। लेकिन चलिए, अभी बोलते बोलते एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, मैंने फ्लोट किया है, शायद कोई क्रांतिकारी व्यक्ति उभर जाए और उसे लगे कि नहीं शिष्य दिवस भी मनाया जाना चाहिए। गुरु को भी एक गर्व होता है अपने शिष्यों को याद करके, और आज मेरे बहुत से ऐसे शिष्य हैं जिनको याद करने के बाद मेरा सीना फूल जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है और मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूं। तो क्यों नहीं एक दिन ऐसा भी हो जबकि गुरु अपने शिष्यों को याद करे और उनका अभिनंदन अपने हाथों से करे। आखिर में पिता या माता अपने बेटे के माथे पर टीका लगाते हैं या नहीं, तो गुरु भी तो अपने शिष्य के माथे पर टीका लगा सकता है जिसका नाम होगा विजय तिलक, यानी कि विक्टरी का जो तिलक होता है, जो सफलता का जो टीका होता है वह सही। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट के इस अंश के बाद अब मैं AIR न्यूज पर आता हूं। फ्रेंड्स, कल के AIR न्यूज में दो सबसे इंपॉर्टेंट खबर हैं। एक को तो मैं इंपॉर्टेंट नहीं मानूंगा, लेस इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, जो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल की एक खबर थी कि उन्होंने दिल्ली, मतलब वहां का जो पंजीकरण विभाग है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो डीजल वाहन जो 10 साल से पुराने हो गए हैं उनका जो पंजीकरण है वो रद्द कर दिया जाए। दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, अनबियरेबल होता जा रहा है, उसकी वजह से दुनिया भर की बीमारियां पैदा होने लगी हैं। जो नई जनरेशन है वो, उसका तो एक तरह से अस्तित्व ही संकट सा दिखाई पड़ने लगा। अभी से कितनी तरह की वो बीमारियों के शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खासकर जो ग्रीन हरित ट्रिब्यूनल, इस पर एक प्रश्न भी आया है इससे पहले, ये भी अब ट्रिब्यूनल है ना, ट्रिब्यूनल का मतलब पूरी तरह से आप इसे न्यायालय के समकक्ष तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो है, मतलब उसके पास अपने अधिकार हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय नहीं तो हाई कोर्ट के लेवल की तो इसको इसका अधिकार है ही। तो ये ट्रिब्यूनल भी आप देख रहे हैं कि अब थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं, ज्यादा सक्रियता के साथ सामने आ रहे हैं। यही हरित ट्रिब्यूनल है। आपको ध्यान होगा कि जब श्री श्री रविशंकर वहां यमुना के किनारे एक विश्व सांस्कृतिक उत्सव या कुछ इस तरह का प्रोग्राम करने जा रहे थे, तो खासकर वहां जो गंदगी फैलेगी और यमुना का जो प्रदूषण होगा उसको लेकर के उन्होंने उन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसको शुरुआत में उन्होंने मना कर दिया था देने से, लेकिन बाद में फिर उनको देना पड़ा। दोस्तों, मुझे लगता है कि सच में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर प्रशासन को लगता है कि शायद चीजें उसके कमांड में नहीं है, तो कमांड तो किसी न किसी को अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंततः जीवन से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, उससे तो समझौता नहीं ही किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो जुडिशियल की जो सक्रियता है, मैं एक्टिविज्म उस तरीके से तो नहीं कहूंगा, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उसका फैलाव होता जा रहा है। अब इसको लेकर के प्रशासन को एक अलग तरीके की दिक्कतें होती हैं, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके अपने कंप्लेंट्स हैं, वो एक अलग बात है दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि जब आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो फिर उसको करेगा ही। तो मित्रों, ये एक खबर थी। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों, वो है खासकर आपने देखा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में पिछले कुछ समय से एक बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार और पता नहीं क्या किस किस तरीके के आरोप लग रहे थे, और हालत ये हुई कि फिर जो हमारे जो चीफ जस्टिस रहे हैं लोढ़ा जी, उनको उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उनसे कहा गया कि आप इनके पूरी कार्यप्रणाली को सब देखते हुए और सुधार के लिए कुछ रिपोर्ट्स आप प्रस्तुत करें। तो लोढ़ा समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, आप लोगों को ध्यान होगा अगर आप लगातार न्यूज से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज नई नहीं लगेगी। और इसके बाद फिर उस रिपोर्ट पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कल अपनी मुहर लगा दी है और बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वस्तुतः सुप्रीम, मतलब अब BCCI को अपने में क्या क्या सुधार करने चाहिए। राइट फ्रेंड्स, यहां जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करने जा रहा हूं वो ये कि देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी समिति की रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट किया है और जो जो चीजें अभी अखबारों में, न्यूज में पढ़ने और सुनने में आ रही हैं, वो हालांकि हैं एक स्पोर्ट्स कमेटी के बारे में, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के बारे में। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक खेल का संस्थान है, लेकिन यहां आपको वो तत्व दिखाई देंगे जिसे सही मायने में आप प्रशासन के बारे में भी कह सकते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशंस पर भी आप लागू कर सकते हैं, चाहे फिर वो खेल से जुड़े हों या न हो। तो आप इसके जो तत्व हैं, इसके जो फैक्टर्स हैं, जिन सुधारों के बारे में उन्होंने रिकमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ओके किया है, इनको आप प्रशासन और दूसरे क्षेत्रों में भी लागू करने के लिए एक छोटे छोटे तत्वों के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी प्रश्न इस तरह के अगर पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में, तो आप उनमें इसे शामिल कर सकते हैं। अगर हम जितने भी इनकी सिफारिशें अभी एक्सेप्ट की गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं मित्रों, अगर हम इनको बहुत ही मोटे तौर पर डिवाइड करें कि इनके पीछे फिलॉसफी क्या है, मतलब वो किन चीजों को आधार लेकर के वो इन सब इस तरह की सिफारिशें कर रहे हैं, तो आपको इनके दो आधार दिखाई देंगे। नंबर एक, कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। जो पावर्स होती हैं, वो पावर्स किसी एक व्यक्ति या एक ही संस्थान या कुछ लोगों के समूह तक सीमित नहीं होना चाहिए। अगर उसका फैलाव व्यापक है, बहुत व्यापक है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं उस अंतिम बिंदु तक होना ही चाहिए। देखिए, बेसिकली जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, वो शक्ति का केंद्रीकरण ही है। जब सारी शक्तियां एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों तक सीमित हो जाएं, फिर चाहे यह राजनीति में हो, चाहे जुडिशरी में ही क्यों ना हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे परिवार में हो, समाज में कहीं भी हो, क्योंकि कहा ही जाता है कि जो पावर है वो व्यक्ति को करप्ट करती है, वो करप्ट करती है व्यक्ति को। तो अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक तरीके से करप्शन कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा, उस पर नियंत्रण लगेगा। आप देखिए कि जो पॉलिटिक्स में धीरे धीरे जो डिसेंट्रलाइजेशन का एक दौर चला है, आप इनको ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से टॉप से लेकर के अब धीरे धीरे लगातार इसी पर बात होती रहती है। और सोचिए कि 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद जो हमारी लोकल डेमोक्रेटिक बॉडीज है, पंचायतों को ले लीजिए, धीरे धीरे कितने अधिकार उन तक पहुंच गए हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, और खासकर डेवलप्ड कंट्री में तो ये डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति पर आप मत जाइए, जो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन रोजमर्रा की चीजों में वहां पावर की डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है। मतलब जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज का मतलब होता है सिटीजन्स, एवरी सिटीजन्स, उनके भी अपने अधिकार कुछ होते हैं। और सच पूछे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की व्यवस्था करके हमने यही किया है, पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। हर व्यक्ति एक तरीके से चलता फिरता इंस्पेक्टर है, सुपरवाइजर है। आप सुपरवाइज कर सकते हैं कि भैया ये बांध बना है, ये खराब दिखाई दे रहा है, ये सड़क बनी है, एक साल के अंदर ये सड़क उखड़ गई है, तो जरा बताइए कि इस सड़क को किसने बनाया है, इसमें कितना पैसा लगा है, क्या क्या इसकी शर्तें हैं, आप दिखाइए बताइए। और इंस्पेक्टर की तरह आप पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, पीडब्ल्यूडी से, सीपीडब्ल्यूडी से, और उनको बताना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से नागरिक के अधिकारों में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। और दूसरा जो सिद्धांत यहां काम कर रहा है मित्रों, वो कर रहा है ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का, कि चीजें ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। पूरा का पूरा प्रशासन, याद रखिए, यही है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा का पूरा प्रशासन, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री का हो चाहे डेवलप्ड कंट्री का हो, इसी दिशा में क्रमशः आगे बढ़ता चला जा रहा है। और नो डाउट कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आया है उसने इसको बहुत ज्यादा संभव भी बना दिया है, तो उससे और ज्यादा प्रेरणा मिल रही है। तो दोस्तों, ये दो जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात की, तो इनके आधार पर आप इनकी सिफारिशों को देखिए कि किस किस तरीके की इंपॉर्टेंट सिफारिशें हैं, और फिर आप उनको क्लासिफाई करते चले जाइए उसमें। जैसे उन्होंने कहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अब ये जो बीसीसीआई और बीसीसीआई जो है कमेटी है, इसमें कोई मंत्री सदस्य नहीं होगा। और दूसरी बात कह दी कि कोई सरकारी अफसर भी इसका मेंबर नहीं होगा। आप देख रहे हैं, इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करके देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है। मंत्री और सरकारी अफसरों को ही क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि मित्रों, ये अपने अपने स्तर पर कहीं न कहीं अधिकार संपन्न लोग हैं, और ऐसी स्थिति में होते हैं कि ये दबाव डाल सके, अपने मन की करवा सके। और सच पूछिए तो जो मंत्री और अधिकारी होते हैं उसमें मान लीजिए और भी लोग होते ही, मान लीजिए क्या होते ही हैं, दूसरे वो क्षेत्र के लोग भी होते हैं, लेकिन इनके ये इतने ताकतवर होते हैं कि इनकी बातों को अवॉइड करना आसान नहीं होता है। तो पता लगा कि मान लीजिए कि 20 सदस्यों वाली समिति है और उसमें एक मंत्री है और दो अफसर है, तो ये तीन बाकी 17 पर भारी पड़ते हैं, उनका कोई ज्यादा अर्थ रह नहीं जाता, वो अपनी बात तक रख सकते हैं, बस निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है, रियल पावर्स। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है कि समिति जो भी निर्णय लेगी वो तटस्थ निर्णय नहीं हो सकती, वो खेल के हित में लिया गया निर्णय नहीं होगा, वो इनके दबाव में आया हुआ निर्णय होगा। और देखिए जो पॉलिटिकल फील्ड में रहते हैं मित्रों, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी कार्य प्रणालियां हैं, वो जनता के दबाव में या ग्रुप के दबाव में या जिसके दबाव में उनको काम करना पड़ता है। मैं उनको उनके काम को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर पॉलिटिशियंस में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो एक ग्रुप के हित के ऊपर राष्ट्रीय हित को ध्यान दें, मानव के हित को ध्यान दें, चाहे फिर वो व्यक्ति का ही हित क्यों ना हो। मान लीजिए कि किसी खिलाड़ी सच में अच्छा खिलाड़ी है तो उसी का चयन होना चाहिए, तो इन सबको बाहर कर दिया है। मित्रों अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ फिल्में आई हैं इधर 2-3 साल में, जो स्पोर्ट्स मैन हमारे रहे हैं बहुत ही फेमस, उन पर कुछ फिल्में आई हैं, और उन फिल्मों में ये इन सारी चीजों का एक भले ही वो एक उस तरीके से प्रस्तुति हो रही है कि स्टोरी के फॉर्म में हो रही है, और सच पूछे तो बायोपिक फिल्म में फिर स्टोरी पर भी आपको थोड़ा सा भरोसा होने लगता है। जैसे खड़ूस एक फिल्म आई थी, आप देखिए कि उस फिल्म में किस तरीके से एक जो खिलाड़ी है उसको कितना संकट का सामना करना पड़ता है, कितनी ज्यादा राजनीति उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। मैरी कॉम पर आई हुई फिल्म है, आप उसको देखिए। तो इस तरीके से इससे भी इन जो यहां कला का आप एक रोल देख सकते हैं कि किस तरह से कलाएं जो है ना एक तरह से जनभावनाओं को एक तरह से वीविंग का काम करती हैं, जनभावनाओं की जो तार जगह जगह बिखरे हुए हैं, फिर कला अपने एक रूप में उन्हें एक जगह उनकी बुनावट कर देती है, मतलब बिखरे हुए तारों को इकट्ठा करके वो एक तरीके से एक दुपट्टा बना देती है, एक चादर बना देती है, और फिर ऐसे समय पर वो समाज को दिखाई देने लगता है। इन सब चीजों के अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के पीछे यही कारण रहा है, लेकिन जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जनता की जो आकांक्षाएं इच्छाएं जो अभिव्यक्त हो रही हैं अलग अलग रूपों में, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आखिर में समाज का हिस्सा है, उसको भी जनभावनाओं का आदर करना ही पड़ता है कि लोग क्या चाह रहे हैं और साथ ही साथ क्या लोगों के हित में है, ये दोनों ही चीजें। आप देखिए कि फिर रिकमेंडेशन है कि 70 साल से अधिक उम्र के लोग इसमें मेंबर ही नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है। 60 साल में आप गवर्नमेंट सर्वेंट को रिटायर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि न्यू ब्लड आए, अदरवाइज वो तो आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी एज फार एज एक्सपीरियंसेस आर कंसर्न। 65 ईयर्स में जजेस रिटायर हो जाते हैं, तो जब वहां सब है तो ये कहीं ना कहीं इन संस्थाओं में भी इनको रिटायर करके और फिर न्यू जो ब्लड है, जो नए लोग हैं, उनके लिए स्थान बनना चाहिए। सवाल नए ब्लड का उतना नहीं है दोस्तों, जितना कि नए न्यू थॉट्स का है, नए विचारों का है। और मान करके चलिए कि पुराना व्यक्ति कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, नो डाउट उसके पास अनुभव का बहुत जबरदस्त खजाना है, लेकिन उसके पास नई आकांक्षाएं नहीं होती, उसके पास नई उम्मीदें नहीं होती, है ना? उसका तो अतीत लंबा है, भविष्य तो छोटा सा है, तो क्या नई आकांक्षाएं नई उम्मीदें, इसलिए कोई नया जोश भी नहीं होता। लेकिन सम्मान पाने की ललक, अधिकार पर पकड़ बनाए रखने की आकांक्षा उसे इन सबसे जोड़े रखती है, अदरवाइज भविष्य तो उसका नहीं है। और जो न्यू ब्लड है उसका अतीत तो छोटा सा है, पूरा का पूरा भविष्य उसके सामने पड़ा है, अगर वो कुछ अच्छा करता है तो वह उसका भोक्ता भी बनेगा। तो स्वाभाविक है कि जब तक न्यू ब्लड नहीं आएगी संस्थानों में, चाहे राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में, तब तक आप उसके विकास की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये उनका एक दूसरा रिकमेंडेशन रहा। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने ये भी कही है, जो एक तरह से मैं कहता हूं कि वंशानुगत परंपरा जो एक सामंतवादी चेतना की है उसके खिलाफ उठाया गया एक बहुत ही जबरदस्त कदम है, और वो है कि कोई भी व्यक्ति लगातार दो कार्यकाल नहीं करेगा। दो कार्यकाल उसका जो टर्म्स होंगे एक बार बस आप बाहर होइए, हो गया आपने बहुत कुछ कर लिया। जैसे आप देखिए अमेरिका में ही है राष्ट्रपति को दो कार्यकाल बस, हमारे यहां तो अनंत काल तक आप रह सकते हैं किसी भी संस्था में। ज्यादा आप देखिए कि जब जब मतलब खासकर जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए पद हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन वहां उन्होंने कर दिया है कि एक 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 बार आपका टर्म पूरा हुआ बस आप मुक्ति पाइए, नए लोगों को आने दीजिए, वो उत्साही लोग हैं, उनका दिमाग ठस नहीं हुआ है। नहीं तो वंश परंपरा चली आ रही है, एक ही व्यक्ति है तो जोड़ तोड़ करके और बस, क्योंकि उस पद पर है, उस पद में पद पर रहते हुए वो बहुत से लोगों को मोबिलाइज कर लेता है, अपने लोगों को तैयार कर लेता है, तो अगले बार भी वही, उससे अगले बार भी वही, उससे अगले बार भी वही। जबकि उस मजेदार बात है कि उनका उस खेल से कोई संबंध ही नहीं है, खेल से कोई संबंध नहीं, लेकिन चूंकि राजनेता हैं या प्रभावशाली व्यक्ति हैं या पैसे वाले लोग हैं तो उनकी पूछ है और वो उस पर अधिकार जमाए बैठे हैं, क्योंकि वहां सम्मान है, वहां प्रतिष्ठा है। तो दोस्तों ये जो डिसीजन है, मैं आपको एनालिसिस की तरफ ले जा रहा हूं, एक सामान्य से निर्णय नहीं है ये डिसीजन, कहीं ना कहीं हमारी जो वंशानुगत सामंतवादी चेतना है उस पर किया गया एक प्रहार है। इसलिए दोस्तों जिस तरीके जो कि एक कमेंट जो हमारे जस्टिस लोढ़ा ने इसे एक तरीके से खेल के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन करार दिया है कि ये मूलतः एक ऐतिहासिक दिन है, और ये सच में मुझे लगता है कि केवल खेल की दुनिया के लिए ही कोई ऐतिहासिक और क्रांतिकारी दिन नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो ये प्रशासन के लिए भी एक क्रांतिकारी दिन है। और आप देखेंगे कि अभी जो भी समिति की रिपोर्ट आई है, 6 महीने के अंदर इसे लागू किया जाना है, जब ये लागू कर दिए जाएंगे इस पर चर्चा होगी, चर्चा तो शुरू ही हो गई होगी, और इनका प्रभाव अब दूसरे खेल संघ पर भी पड़ेगा, जितने दूसरे खेल संघ हैं उन पर भी इनके प्रभाव पड़ेंगे, वहां भी इस तरह की फिर डिमांड्स शुरू होंगी और उनमें भी एक तरीके से सुधार की आंतरिक प्रक्रिया जारी हो जाएगी। तो मित्रों AIR न्यूज से इतना ही, मैंने जानबूझकर के इस टॉपिक को उठाया ताकि आप उसे और विस्तार से कैसे किसी चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है, जोड़ा जाता है, इंटरलिंकिंग किया जाता है। जैसे कि मैं अपने क्लास में जो 15 दिन की होती है स्टूडेंट्स को यही टेक्निक बताता हूं कि व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे, वो अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे। तो ये उसका एक छोटा सा नमूना है कि हम बात एक चीज पर कर रहे हैं लेकिन उससे हमने ढेर सारी दूसरी चीजें भी जोड़ दी हैं, यही कहलाता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो मित्रों अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज मैं न्यूज़पेपर्स की कुछ क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, उनकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं समझता। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा कि मेरे पास मेल आज नहीं है तो मैं, लेकिन फिर भी खासकर एक बार फिर से जिनके भी मुझे व्हाट्सएप से और स्पेशली राजकुमार लड्डा जी जो फरीदाबाद से हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे प्रति भावनाएं व्यक्त करने के लिए, क्योंकि उनकी जो एज है और मेरी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन उनका भाव कुछ ऐसा है। तो मैं राजकुमार जी आपकी इन भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार करता हूं और आपके प्रति आभार भी आपके इन भावनाओं के लिए व्यक्त करता हूं। तो मित्रों इसी के साथ ही एक बार फिर से आप सभी को इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना कि वह आप में एक अद्भुत अंतर्दृष्टि पैदा करे, आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करे, अंदर से मजबूत बनाए ताकि आप सब न केवल अपनी ही बेहतरी के लिए बल्कि अपने लोगों की बेहतरी के लिए, अपने समाज, अपने देश और इस दुनिया की बेहतरी के लिए सामने आ सकें, कर सकें और अंततः कुछ पा सकें। तो मित्रों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।